समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो में अभी ठीक 4:30 बज रहे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है इनके पास, और इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो दिव्या, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट दिव्या तोमर, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस।
गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित, लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित।
गवर्नमेंट टू रिफर वन नेशन वन इलेक्शन रिलेटेड बिल्स टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए, मुठभेड़ जारी।
गवर्नमेंट एलोकेट्स नियरली 400 crore rupees फॉर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश।
रेलवे अगले महीने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले के मद्देनजर 34 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा।
एंड यूएस फेडरल रिजर्व स्लैशेस इंटरेस्ट रेट्स बाय 0.25% फॉर द थर्ड टाइम दिस ईयर टू टैकल इन्फ्लेशन। And now, Divya, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about TB Mukt Bharat initiative. And as we know, Divya, that tuberculosis or TB remains a formidable public health challenge globally. And India has taken a leading role in the fight against this debilitating disease, isn't it?
बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा। टीबी जिस तरीके से एक बैक्टीरियल रोग है और काफी तादाद में पाया जाता है ग्लोबली भी देखें तो और भारत में भी देखें तो, इसको देखते हुए भारत सरकार ने केंद्रित दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और भारत सरकार ने पहचान, उपचार और रोकथाम में अंतराल को करने के लिए एक महत्वाकांक्षी 100 दिवसीय गहन टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया है। ये टीबी मुक्त भारत के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को ही दर्शाता है कहीं ना कहीं।
Absolutely, Divya, you mentioned that it's a bacterial infection, and let me tell our listeners that it is indeed a serious bacterial infection which primarily affects the lungs, you know, and though it can impact other parts of the body as well, and it spreads through the air when infected individuals cough, sneeze or even sing, releasing droplets containing the bacteria. So Divya, is very important that whenever we have any indication of a cough or a sneeze coming up, it's very important in today's day to actually wear a mask, isn't
Bilkul.
it?
और काफी दिनों तक अगर आपकी खांसी लगातार जारी रहे तो आपको जरूर जाकर के टीबी के जितने भी चेकअप्स हैं वो आपको कराने चाहिए और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। स्पेशली भीड़भाड़ वाली स्थिति जगहों पर अगर आप रहते हैं और जाते हैं तो वहां पर आप स्पेशली ध्यान रखें, आप मास्क वेयर करें। अगर आपकी खुद की तबीयत भी खराब है, आपको कफ है, कोल्ड है, खांसी है, तो भी आप मास्क वेयर करें।
व्हाट वेयरिंग अ मास्क विल डू इज लाइक इट विल स्टॉप ट्रांसमिटिंग द डिजीज टू अदर्स।
बिल्कुल बिल्कुल, और भीड़भाड़ वाली परिस्थितियों में रहने वाले लोग या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले जो लोग होते हैं वो स्पेशली इसके चपेट में आने के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। इसके अलावा HIV एड्स वाले व्यक्ति हैं या फिर विशेष रूप से असुरक्षित होते हैं ये लोग, और इन जोखिमों को पहचानते हुए सरकार ने कई नई रणनीतियों और गहन अभियानों के माध्यम से टीबी का जल्द से जल्द पता लगाने और उपचार को प्राथमिकता दी है।
सो लेट्स दिव्या नाउ टॉक अबाउट द 100-day कैंपेन, मिशन इन एक्शन। व्हाट इज दिस एक्चुअली दिस 100-day कैंपेन? वेल, दिस लैंडमार्क कैंपेन फोकसेस ऑन एक्टिव टीवी स्क्रीनिंग अक्रॉस 347 हायर रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स एंड कंपसिंग अर्बन स्लम्स, ट्राइबल रीजन्स, mining zones and aspirational districts, and using camps at health and wellness centers and 850 mobile टेस्टिंग वैन्स।
और अभियान ने अपने शुरुआती चरण में ही 5 लाख से ज्यादा व्यक्तियों की जांच कर ली है और केवल एक सप्ताह में 6,267 नए रोगियों का पता चला है। टीबी रोगियों के परिवार के सदस्यों, परिवार में पहले से टीबी के केस वाले मरीज, मतलब यानी कि जिनके परिवार में पहले से टीबी का कोई ऐसा हिस्ट्री रहा है, वैसे लोगों को, इसके अलावा मधुमेह यानी डायबिटीज या HIV वाले लोगों जैसे कमजोर समूहों को स्क्रीनिंग के लिए सक्रिय रूप से टारगेट किया जा रहा है। और अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू है सामुदायिक भागीदारी, यानी कि हम समुदाय के तौर पर मिलकर टीबी उन्मूलन के लिए प्रयास करें।
So Divya, what to do if you feel that you have symptoms of this dreaded disease? Mm-hmm. So what should a lame person do?
Mm-hmm.
Well, people who are experiencing symptoms such as persistent cough, mm-hmm. high fever, loss of appetite, significant weight loss, mm-hmm. sleeplessness, breathlessness, chest pain or blood in sputum, what they are encouraged to seek screening, you know.
Mm-hmm.
It's very important to get your screening done.
Huh.
By addressing these warning signs promptly, the initiative aims to reduce delays in diagnosis and treatment. So once this illness is properly diagnosed,
once it's properly diagnosed,
the proper treatment can be administered to the patient, isn't
it? जी बिल्कुल अभिषेक, शुरुआती लक्षण दिखने पर ही आपको स्क्रीनिंग और अपने टेस्ट डायग्नोज वगैरह करवाने चाहिए। सरकार ने चिकित्सा के लिए कई ऐसे सहायक विकल्प उपलब्ध कराए हैं, जैसे कि निक्षय मित्र कार्यक्रम, जो शुरुआत में ही टीबी रोगियों को न्यूट्रिशन बास्केट प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अब रोगियों के परिवारों को भी शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। यानी कि अब न सिर्फ वो रोगी जिनको ये डायग्नोज हुआ है टीबी, बल्कि उनके परिवार के लोगों को भी पोषण युक्त भोजन प्रदान करने के लिए उनको उस तरीके की फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो दी जाएगी। तो
सो इफ यू आर डायग्नोस्ड विद दिस इलनेस, यू नो, फ्रेट नॉट, यू नो, ले स्पेशल एम्फेसिस ऑन न्यूट्रिशन एज यू आर टॉकिंग अबाउट दिव्या, एंड वी ऑल नो दैट न्यूट्रिशन प्लेज अ पिवोटल रोल इन रिकवरी एंड प्रिवेंशन, एंड स्टडीज शो दैट न्यूट्रिशनल सपोर्ट कैन रिड्यूस टीबी मोर्टैलिटी बाय 39% and lower incidence among family members by 38% to 48%. So consult your doctor, formulate a diet chart, what to eat, what not to eat, and focus should be on nutrition. Because we cannot emphasize this point more, like that you should always focus on nutrition when you are in the recovery stage.
बिल्कुल, और इन प्रयासों को और बढ़ावा देने के लिए निक्षय पोषण योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। 12.5 या उससे कम BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स रोगियों के लिए विशेष पोषण संबंधी सहायता भी शुरू की गई है, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों को वो सहायता मिले जिसकी उन्हें आवश्यकता है।
Now, how to reach the diverse demographics in the country, Divya? Now, reaching various demographics is essential for the campaign's success with the 100-day campaign, which we are talking about.
Okay.
It aims to actively involve students, youth, corporate employees, workers from brick kilns, mines, construction sites, and tea gardens. So basically, people from all walks of life.
Okay.
By tailoring outreach efforts to specific groups, the initiative ensures maximum participation.
टीबी मामलों के अधिकतर जिले कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हैं। 347 हाई रिस्क वाले जिलों में से 38 जनजातियां हैं, 27 खनन वाले जिले हैं और 47 आकांक्षी जिले हैं। केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यह कहा है कि हम टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। भारत में टीबी के मामलों में 17.7% की कमी देखी गई है, जो कि वैश्विक टीबी उन्मूलन की दर से दोगुनी है।
So let's also talk about what the role the leadership and collaboration can play in the combating this illness.
Bilkul.
Well, leadership from all levels of governance has been pivotal, and union ministers and members of parliament MPs have taken an active role in raising awareness, monitoring progress and mobilizing their constituencies.
Aur haal hi mein sansad pustakalay ke bal yogi sabhagar mein ek karyakram mein 250 sansadon ne abhiyan ka samarthan karne ka sankalp liya, unhen nikshay shivir आयोजित करने, ग्राम सभाओं में टीबी जागरूकता को बढ़ावा देने और टीबी चैंपियन और निक्षय मित्रों को उनके योगदान के लिए मान्यता देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
इवन वी सी दैट इवन इन द ग्रासरूट लेवल दिव्या, पंचायत्स एंड कम्युनिटी लीडर्स हैव आल्सो बीन कॉल्ड अपॉन टू ड्राइव ग्रासरूट्स पार्टिसिपेशन, एंश्योरिंग टीबी सर्विसेज रीच एवरी नुक एंड corner of the country. So to wind up our discussion on TB Mukt Bharat, I mean, lots of initiatives and effort is going on into the prevention of this disease. And as the campaign progresses, the unwavering commitment of leaders, healthcare providers and citizens will undoubtedly shape the success of this transformative journey towards eliminating TB from India.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. तो सबसे पहले अभिषेक, हम कहां जाएंगे परिक्रमा में?
Yes, we start off with a story from Puducherry. And the Nationwide Good Governance Week campaign, Prasasan Gaon Ki Or, was launched today to address public grievances and enhance service delivery of government system. The Karaikal District Administration in Puducherry has planned a series of activities to mark the occasion. We have more from a correspondent.
Karaikal District Collector Dr. D. Manikandan inaugurated the Good Governance Week celebrations this morning at the PKCE College Auditorium. A special awareness session was conducted for students focusing on various services such as DigiLocker, Aadhaar, scholarships, exam-related websites, road safety and solid waste management. The Indian Bank organized an awareness session on the Pradhan Mantri Suraksha Bhima Yojana and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bhima Yojana. Additionally, a special Siddha medical camp was held for the public. On December 21st, as a part of the Collector at Your Doorstep program, multiple initiatives are planned. On Sunday, December 22nd, the district will celebrate National Mathematics Day with a Scientist in Every Home campaign. In partnership with Karaikal Krishi Vignan Kendra, a Farmers Day celebration and grievance redressal camps for farmers will also be organized. Other events include a consumer awareness campaign, career guidance seminar, awareness program on one-stop centers, and a grievance redressal camps for differently abled individuals. The Good Governance Week campaign will conclude on December 25th with a mass cleaning drive and an awareness campaign on solid waste management. Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
और अब आपको ले चलते हैं परिक्रमा में हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन किया गया. ये 5 दिवसीय समारोह आज समाप्त होगा. समारोह में देश और दुनिया के नामचीन संगीत साधकों ने अपनी अनमोल प्रस्तुतियों से समा बांध दिया. और जानकारी दे रहे हैं भोपाल से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा.
मध्य प्रदेश की संगीत नगरी ग्वालियर में आज शाम 5 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध तानसेन समारोह का समापन हो जाएगा. इस साल की खास बात यह है कि यह 100वां आयोजन है. तानसेन संगीत समारोह में इस साल 10 संगीत सभाएं निर्धारित की गई थीं. पहली सभा 15 दिसंबर को शाम तानसेन समाधि परिसर में बनाए गए भव्य मंच पर सजी. इसके बाद हर दिन यहीं पर सुबह और शाम की सभाएं हुई. मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आज ग्वालियर से बेहट तक एक रैली भी निकाली गई. तानसेन समारोह की एक अन्य उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई. इसके लिए तानसेन संगीत शताब्दी समारोह के तहत रविवार शाम ग्वालियर के कर्ण महल दुर्ग पर 546 साधकों के वाद्य यंत्र एक साथ गूंजे. बांसुरी, सितार, सरोद, संतूर, शहनाई, वायलिन, सारंगी, हारमोनियम पर साधकों की 9 मिनट की समवेत प्रस्तुति ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा दिया. वहीं कल भव्य एवं गरिमामय अलंकरण समारोह में भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र के विश्व विख्यात तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से विभूषित किया गया. इसके साथ ही इंदौर की संस्था सानंद न्यास को वर्ष 2023 के राजा मानसिंह तोमर सम्मान से अलंकृत किया गया. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत सम्राट तानसेन के नाम से स्थापित यह सम्मान भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय संगीत सम्मान है. राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण से विभूषित पंडित स्वपन चौधरी ने कहा कि मुझे शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तमाम सम्मान मिले हैं, पर तानसेन सम्मान उन सब में सर्वोपरि है. परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा.
From the heart of India, Bhopal, now we move over to the western part of the country, that is Maharashtra. And with the boom in technology where we can send across the message within seconds, we have lost that touch of handwritten letters and the emotions attached to them. And in order to revive the lost touch of handwritten letters and the emotions attached to it, the Department of Post has been organizing Dhai Akhar National Level Writing Competition. As part of this initiative, India Post Maharashtra Circle hosted the second edition of Patra Utsav 2.0. Let's hear more from a correspondent, Ankita Apte from Mumbai.
We all must have heard old Hindi songs describing the heroine using a pigeon or a crow to take her letter to her beloved or waiting impatiently for his answer. But today, out of around 150 children from different schools had gathered in the huge delivery hall of Mumbai GPO. And when asked how many of them had written a letter to someone, hardly 5 to 6 hands went up in the air. The remaining were only familiar with the concept of writing a letter thanks to that 1 5-mark question in their exam. To tackle this situation, the Mumbai GPO, through its Patra Utsav 2.0 initiative, encouraged them to write letters and feel that value, nostalgia and artistry attached with it. Renowned Marathi writer Madhu Mangesh Karnik was present during the program. Chief Postmaster General of Maharashtra Circle Amitabh Singh shared the thought behind Patra Utsav 2.0 and said,
Postcard to abhi bhi aam aadmi ka ek madhyam hai, wo kahin bhi pahunch jata hai pure desh mein. और एक चिट्ठी परमानेंट चीज है, उसको आप 10 बार सोचेंगे उसको फाड़ने में, जबकि ईमेल को या किसी मैसेज को डिलीट करने में कुछ नहीं होता. उस चीज के साथ एक इमोशन जरूर कम्युनिकेट होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की विचार अलग है, हर व्यक्ति की हैंडराइटिंग अलग है, तो पत्र में वो हैंडराइटिंग और उस व्यक्ति का एक हमेशा का एक मेमोरी रहता है.
द इवेंट ऑल्सो फीचर्ड अ कैलीग्राफी वर्कशॉप एंड द रिलीज ऑफ अ स्पेशल पोस्टल कैंसिलेशन टू कमेमोरेट द इवेंट एंड अनवील द महापेक्स 2025 mascot Shekru, which is Maharashtra's state animal, marking a significant milestone for Indian Post. For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
President Draupadi Murmu is going to award the President's colors to the College of Defence Management, CDM, Secunderabad tomorrow, marking a milestone in its over 50 years of journey. President Murmu will do the honours at a ceremony to be held at the CDM tomorrow. Our correspondent brings his report about the momentous journey of the CDM and its contribution to the nation.
The recognition of awarding President's colors to the College of Defence Management is a pride moment for every military officer of the tri-services who got trained at the prestigious college, as it is the highest honor for an armed forces establishment. Established in 1970, the CDM has evolved from its initial focus on administrative training to a curriculum that includes strategic planning, resource management and leadership. CDM Commandant Major General Harsh Chibber explained that the CDM programs, including the higher and senior defense management courses, attract military personnel from India and across the world. The college imparted training through its programs to many officers from over 50 countries. The commandant said the CDM is continuously evolving to meet the demands of modern warfare and global geopolitics. With growing emphasis on multi-domain warfare, its curriculum now includes modules on big data analytics, international relations, military diplomacy and strategic management. The commandant informed that over the decades, the college has adapted to shifting global and national security dynamics.
It's a matter of great pride and honor for us to be awarded the highest award for any defense establishment, and that is President's Colors. It comes with a lot of humility, a lot of gratitude to our forebears who actually worked hard to make us reach at this stage where today we are a very prestigious center of excellence in defense management, not only in India, but in the entire Asian subcontinent. We take a lot of pride in our legacy. It also gives us a lot of confidence that we will be able to prepare our leaders, meeting the future strategic challenges to our national security.
Major General Harsh Chibber further said the CDM is also working with IIT Hyderabad on startups and got good dividends, and to bring down the gap between the defense technology needs. The College of Defense Management stands today at the forefront of professional military education in India and beyond. Lakshmi for Parikrama, Hyderabad.
Now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Today we pay tribute to Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan and Roshan Singh, who attained martyrdom on 19th of December 1927. Ram Prasad Bismil was among the most notable Indian revolutionaries who fought against British colonialism.
The ideals of freedom and revolution got first ingrained in his mind
after he read the death sentence passed on the freedom fighter Bhai Parmanand. He used to give vent to his anger in the form of poems.
Bismil rose as a prominent freedom fighter with his participation in Mainpuri conspiracy.
In 1918, Ashfaq Ullah was a student in school. Inspired by the Mainpuri conspiracy, young Ashfaq Ullah asked his friend to introduce him to Ram Prasad Bismil. And thus, in 1920, began the legendary friendship of Bismil and Ashfaq Ullah.
Ashfaq and Bismil engaged in revolutionary activities under the banner of the Hindustan Republican Association.
They were arrested after the Kakori robbery, and the trial for the case went on for over a year and a half. It ended in April 1927 with Ram Prasad Bismil, Ashfaq Ullah Khan and Rajendra Lahiri sentenced to death and the others given life sentences.
While in Lucknow Central Jail, Bismil wrote his autobiography and also the cult song, Mera Rang De Basanti Chola. Jai Hind on his lips, the 30-year-old Bismil was hanged in the Gorakhpur jail on December 19, 1927 and cremated on the banks of Rapti River. Ashfaq Ullah Khan was put to death by hanging on 19th of December 1927 at Faizabad jail.
Roshan Singh was an Indian revolutionary born on the 22nd of January 1892 in Shahjahanpur district in Uttar Pradesh. Although he had not taken part in the Kakori conspiracy of August 1925, he was arrested and tried for a murder carried out during the Bamroli dacoity in December 1924. He was sentenced to death along with Ram Prasad Bismil, Ashfaq Ullah Khan and Rajendra Lahiri. He was executed at Naini Jail in Prayagraj. On the 19th of December 1927, we pay tribute to the brave sons of the soil.
December 19 is also the Goa Liberation Day. On August 15, 1947, when India gained its independence, Goa was still under the Portuguese rule. Following unsuccessful negotiations with the Portuguese, the former Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, decided that military intervention was the only option. The 36-hour military operation conducted from December 18, 1961 was codenamed Operation Vijay. On December 19, 1961, Indian troops reclaimed the Goan territory and the Portuguese Governor-General, Manuel Antonio Vassalo de Silva, signed the Certificate of Surrender, thus bringing Portuguese rule in the region to an end. This made India completely free from foreign rule.
In business news today, domestic benchmark indices Sensex and Nifty 50 crashed over 1% each today, following the US Fed rate cut outlook. This marks the fourth consecutive session of losses for Indian markets. The Sensex closed 964 points, or 1.2%, down at 79,218, while the Nifty 50 settled 247 points, or 1.02%, lower at 23,951. In the global crude market, Brent crude was trading 0.14% down at $73.19 per barrel, and the WTI crude was trading marginally down at $70.56 per barrel when reports last came in.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. भारत और वेस्ट इंडीज के बीच महिला T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच आज नवी मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा. मैच शाम 7 बजे शुरू होगा. दोनों टीम श्रृंखला में एक एक की बराबरी पर हैं. और श्रोताओं, अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस. श्रोताओं, आज सबसे पहले याद कर रहे हैं
Emily Jane Bronte, who passed away on this day in 1848. She was an English novelist and poet who is best known for her only novel, Wuthering Heights, now considered a classic of English literature. She also published a book of poetry with her sister Charlotte and Anne. She published under the pen name Ellis Bell.
और आज ही पुण्यतिथि है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और गुजराती भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे उमाशंकर जोशी की, जिनका नाम उपनाम वासुकी है. उमाशंकर जोशी प्रतिभावान कवि साहित्यकार साहित्यकार थे। 1931 में प्रकाशित काव्य संकलन विश्व शांति से उनकी ख्याति एक समर्थ कवि के रूप में हुई थी। जोशी जी अध्यापक और संपादक रहे। वे गुजरात विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष भी रहे। जोशी जी को साहित्य अकादमी का अध्यक्ष भी बनाया गया। 1979 में वे शांति निकेतन के विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। उमाशंकर जोशी की प्रमुख कृतियां हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निशीत, गुले पोलान, प्राचीना, सापना भरा अभिज्ञा आदि।
Joseph Mallord William Turner passed away in this day in 1851. Known in his time as William Turner, he was an English romantic painter, printmaker, and watercolorist. He is known for his expressive coloring, imaginative landscapes, and turbulent, often violent, marine paintings. He left behind more than 550 oil paintings, 2,000 watercolors, and 30,000 works on paper. He was championed by the leading English art critic John Ruskin from 1840 and is today regarded as having elevated landscape painting to an eminence rivaling history painting.
और आज ही पुण्यतिथि है जाने माने लेखक, संपादक, छायाकार और गांधीवादी पर्यावरणविद रहे अनुपम मिश्र की। वे पर्यावरण के लिए वो तब से काम कर रहे थे जब से देश में पर्यावरण का कोई विभाग नहीं खुला था। बगैर बजट के मिश्र ने देश और दुनिया के पर्यावरण की जिस बारीकी से खोज खबर ली है वो कई सरकारी विभागों और परियोजनाओं के लिए भी संभव नहीं था। उनकी कोशिश से सूखाग्रस्त अलवर में जल संरक्षण का काम शुरू हुआ जिसे दुनिया ने देखा और
सराहा। स्लियो वर्जीनिया एंड्रूस पास्ड अवे ऑन दिस डे 1986, बेटर नोन एज वीसी एंड्रूस और वर्जीनिया सी एंड्रूस। She was an American novelist. She was best known for a 1979 novel, Flowers in the Attic, which inspired two movie adaptations and four sequels.
और अब बात करते हैं जन्म दिवस और जयंती की। आज जयंती है भारतीय सिनेमा जगत के मशहूर चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश की। ओम प्रकाश का जन्म 19 दिसंबर 1919 को जम्मू में हुआ। हिंदी फिल्म जगत में ओम प्रकाश की एंट्री फिल्मी अंदाज में हुई। वो अपने एक दोस्त के यहाँ शादी में गए हुए थे जहां पर दलसुख पंचोली ने उन्हें देखा और तार भेजकर उन्हें लाहौर बुलवाया। दलसुख पंचोली ने फिल्म दासी के लिए ओम प्रकाश को 80 रुपए वेतन पर अनुबंधित किया था। ओम प्रकाश की ये पहली बोलती फिल्म थी और इसके बाद उन्होंने लगभग 350 फिल्मों में बतौर चरित्र अभिनेता काम किया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म वरदान का ये डायलॉग।
मुझे बरी किया जाता है सिर्फ इसलिए कि मैं कानून की नजरों में बेगुनाह हूँ, सिर्फ इसलिए कि कानून के पास ऐसे माँ बाप के लिए कोई सजा नहीं जो बेटे की कमाई पर ऐश तो करते हैं मगर ये जानने की कोशिश नहीं करते कि कमाई आती कहाँ से है। जज साहब, मैंने झूठ को सच समझा, पैसे की चकाचौंध ने मुझे इतना नीच बना दिया कि मैंने देवी जैसी पत्नी का साथ छोड़ दिया।
Yes, and Om Prakash has played in many comedy films and his role in Gopi with Dilip Kumar is considered best in terms of acting. Critics still think he gave better performance in tragic scenes in front of Dilip Kumar. So let's go ahead and listen to yet another dialogue from one of his movies.
Ek baat ke liye main tumhara bahut ehsaanmand hoon. Tumse maine ye sabak sikha hai ki zinda rehne ke liye apne siwa kisi aur ka hona bilkul zaruri nahi. Aadmi jinke saath jeena chahta hai, unke bagair bhi jee sakta hai.
और आज जयंती है भारत के एक वैज्ञानिक और अपने समय के अग्रणी चिकित्सक राय बहादुर सर उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी की। श्री उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी का जन्म तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में आज ही के दिन 1873 में हुआ था। वर्ष 1922 में उन्होंने यूरिया स्टिबेमाइन का संश्लेषण किया और ये निर्धारित किया कि ये कालाजार के उपचार के लिए एक बेहतरीन दवा है। उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी ने कालाजार की दवा बनाकर लाखों की जिंदगी बचाई। भारत की माटी ने ऐसे कई वैज्ञानिकों को जन्म दिया जिन्होंने पूरी दुनिया में नई दिशा दिखाई। ऐसे ही भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी भी उन्हीं में से एक थे। वे नोबेल पुरस्कार के लिए नामित भी हुए लेकिन दुर्भाग्यवश दूसरे विश्व युद्ध के कारण उन्हें नोबेल नहीं मिल पाया।
Yes, and Raj Singh Dungarpur was born on this day 1935. He was president of Board of Control for Cricket in India. And as the chairman of the selection committee, Dungarpur introduced Sachin Tendulkar to international cricket by selecting him for India's 1989 tour of Pakistan when he was just 16 years old. He's also credited for establishing the National Cricket Academy in Bangalore. And also, I think Divya Govind Nihalani was born on this day.
Ji.
Yes, sir.
और आज ही
Yes, sir. He was an Indian film director, cinematographer, screenwriter and producer, known for his works in Hindi cinema, particularly the movement of parallel cinema.
और आज ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर नैन रामलाल मोंगिया का जन्मदिन है. वे दाहिने हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं. और नैन मोंगिया हिंदुस्तान के नेचुरल कीपर कहे जाते हैं. 90 के दशक में नैन मोंगिया को कई बार सलामी बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर भेजा गया. और नैन मोंगिया के नाम टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का अनोखा रिकॉर्ड है.
So with that, we wind up this edition of the Parikrama program. So from Divya Tomar and me, Abhishek Mukhopadhyay, till the next time, bye and
Namaskar.